Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada
सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आपकी मुक्ति का समय आ गया है हाँ जाने को आप यहीं रुक सकते हो कोई चिंता नहीं आपको नहीं लेकिन बहुत सारे लोग एकदम रेडी हैं कब यहाँ से मुक्ति हो कब दरवाजा खुले बाहर जाए छुटकारा मिले रोज रोज सुबह दोपहर शाम प्रवचन से हाँ सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला बहुत अच्छा लगा 3 दिन, एक एक परिवार का वातावरण ऐसा लग रहा था कि हम सब एक परिवार के हैं, लग क्या रहा था है ही, लेकिन ऐसा अनुभव हुआ। और आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा यहाँ पर आना, और फिर से आने की कामना भी करेंगे। आप सब आना चाहते हैं फिर से आप लोग अभी मुक्ति होकर फिर से वापस बंधन में, तो अभी समय है आप लोगों के बोलने का। हमने बहुत बोल लिया, और क्योंकि अभी समय कम है, जाना भी है, तो हम चाहते हैं कि पहले आप लोग बोल लें, फिर समय बचेगा तो हम बोलेंगे। तो दीक्षा के बारे में, हाँ, लेकिन बाद में, अंत में बोल लेंगे अगर समय हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर अगली बार जब आएंगे, क्योंकि एक बार शुरू किया टॉपिक तो बहुत सारे प्रश्न होंगे, फिर 1-1.5 घंटा वही चलेगा और फिर समय हो जाएगा जाने का, आप लोग नहीं बोल पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी बोले, और आप लोग भी चाहते होंगे ऑफ कोर्स कि आप लोग बोले, बहुत दिनों से सुन रहे हैं आप। तो आप में से कौन बोलना प्रारंभ करेंगे? बोलना मतलब केवल आपको इतना ही है कि यहाँ ये 3 दिन आने से, ये सुनने से आपको कुछ लाभ हुआ ऐसा आपको लगा, और जैसे हमने सुबह भी बताया था, इसमें कोई कमियाँ रह गई हों तो उसको आप बता सकते हैं। और वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि यात्रा बार बार होनी चाहिए ऐसी छोटी सी, 3 दिन की, पास में ही है, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 घंटे का रास्ता है, तो कितनी बार करें ये सब चर्चा आप लोग अभी करेंगे। तो कौन सबसे पहले क्या बोलते हैं सूली पर चढ़ना चाहेंगे? ऐसा ही होता है ना, किसी के सामने बोलना है तो ऐसा लगता है, और अभी तो आप सबको बोलना है, किसी को छूट नहीं है, तो इसीलिए जो भी पहले आए बाद में आए कोई फर्क नहीं, बोलना तो सबको है। ये माइक को प्रयास करेंगे आपके हाथ में देने का, आप लोग प्रयास कीजिए इसको करने का, क्योंकि ये दिव्य स्तर पर है माइक, अपने मन से चलता है। तो प्रार्थना करेंगे अरबी सिंह प्रभु से कि वो आए और शुरुआत करें, और फिर उनके बाद नेताजी चरण प्रभु, और फिर 2 माता जी। अब माता जी में कौन आएंगे वो आप निर्णय कीजिए।
हिंसा हुई आपके साथ?
तीनों तरह का लाभ हुआ, उसका उल्टा हिंसा को लिया। शरीर के स्तर पर यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो सुविधा यहाँ पर उन्होंने बनाई है डेली स्टेट और भी आर्ट जिसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छी सुविधा, मैंने शायद इस तरह की सुविधा कहीं देखी नहीं यहाँ तक, किसी व्यक्ति ने इतना पैसा लगा करके, और वो भी फ्री कोई आपको पैसा नहीं देना है, और यहाँ तक उनकी इच्छा है कि यहाँ पर एक लॉटरी लगा करके और भक्तों को दिया जाए, उससे बढ़कर क्या शरीर की सेवा हो सकती है। वास्तव में काबिल तारीफ की सेवा की बात करें, जो हम लोग सेवा कर रहे हैं उनका हमारे प्रति जो उनका व्यवहार है, एटीट्यूड है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ईश्वर आत्मा के लेवल पर ले जाने की जरूरत नहीं है। इसका नाम ही ऐसा रखा गया, इसको कहते हैं कि श्रवण यात्रा। तो यहाँ पर मैंने अभी तक जितने प्रोग्राम अटेंड किए हैं उसमें जितना मन लगा करके सुनने को यहाँ पर मिला, शायद कहीं ऐसा मौका मिला होगा कि यहाँ पर बिल्कुल आराम से आप शरीर से मन से बिल्कुल शांत हैं और बिल्कुल कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और इतनी बुरे बातें सुनने को मुझे मिली तो वो उससे मतलब आत्मा की तरक्की हुई। तो मैं और इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि शरीर के लेवल पर, मन के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर हमको लाभ हुआ। और साथ में मैं सोचता हूँ कि एक साल में कम से कम एक बार तो मौका ही मिले हमें तो मैं जरूर आना पसंद करूंगा, बहुत जरूर आऊंगा मैं यहाँ पर। जरूर ये प्रोग्राम होगा टाटा के भक्तों के साथ में, प्रभु जी के साथ में, हर साल में जरूर आऊंगा। धन्यवाद।
मिला और नए नए विषय हम सीखे, फिर इतना तुम्हारा क्या फर्क मालूम करते हैं। मेरा गुरुदेव इतना से कि प्रभु जी अच्छा तरह से बोलते हैं, फिर अभी हम भी सुन लेते हैं। बाद में इधर बाहर जैसे हम तो और बार एक बार पूछा तो कुछ ऐसे उत्तर दीजिए तो नहीं आता। ये तो मेरा गुरुदेव क्या तुम्हारा तो ऐसे यात्रा बार बार आना चाहिए।
उनको वहीं पे माइक दीजिए, जो नहीं आएगा माइक वहां जाएगा। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, आइए। आप खड़े हो जाए तो लोगों को दिखाई दे देंगे। सबको बोलना है, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे नहीं कि केवल आपको बोले। जो लोग अभी सर नीचे कर रहे हैं सबको बोलना है।
और उसके बाद ये फिर आप बोलोगे आइए कुछ तो मैं बोलूं जल्दी।
मैं सोचता रहा कि माता जी बोलेंगे बोलेंगे कब बोलेंगे पता ही नहीं चला. आपको पता चला?
उधर भी रेस्ट के फिर तुरंत ऐसा
मंदिर आना ज्यादा करेंगे या नहीं? नहीं, इसका लाभ, इस कोर्स का लाभ क्या हुआ? आप तीन चीज में से एक बताइए, सेवा ज्यादा करेंगे, जब ज्यादा करेंगे, मंदिर ज्यादा
और भगवान से
धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कौन रह गए? आप प्रभु जी इसमें कोई रहे नहीं ना? माता जी होंगे, कौन रह गए हैं? हम जब ऐसे इस तरफ मुंह करते हैं सबके मुंह ऐसे हो जाते हैं, कैसे बुलाएं? आप आइए, आप आइए। मारी सुमन मारी आप देखिए, जिनका नहीं हुआ उनको जरूर देखिए। तो आप थोड़ा थोड़ा बोलिए कोई आपका अच्छा है। नेताजी चरण को माता जी कहाँ है? माता जी देखिए, माता जी
भाग गई
है। अरे थोड़ा पास से बोलिए, सुनाइए। और कोई माता जी? कोई हाँ, मंगला माता जी आ रही है। आप डिसाइड करना, भेज देना। अभी माइक पास में रखिए, पास थोड़ा खराब है। आप कोंकणी में बोलिए, सबको कोंकणी समझ में आती है।
बात है कि इस धाम में
सेवा करने की सबका सहयोग है और भक्ति के साथ इतना आनंद मिलते हैं, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कीर्तन में डांस करना और खास करके एक भक्त दूसरे के दूसरे भक्त से जब ओपनली मिलते हैं तब अपने आप अपना फीलिंग्स शेयर करते हैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये काफ़ी अच्छा लगता है। शायद हम भी हम इसको इतना बिजी शेड्यूल रहते हैं कि हम उसको क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे जैसा सरल धाम है ना संदेश है और दिन दिन कैसे भी किया सच के किसी को पता नहीं चला होता, तो हम दिन आज महिला मंडी में धन्यवाद करता हूँ प्रभु ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए हैं और प्रोत्साहन से बहुत अच्छी है इसलिए प्रभु के लिए जीवन निर्भर करेंगे। मैं कुछ दिन बाद मेरी मुंबई जा रहा हूँ तो उनसे मिलना है कि अगर ऐसे कुछ आगे प्रोग्राम है कि हमें सभी के प्लेसमेंट के आना चाहिए प्रोग्राम के लिए।
इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।
तो एक ड्राइंग्स लेकर आए थे उन्होंने की थी हमें दिखाने के लिए। वैसे वो भी बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, उन्होंने मंदिर में बहुत सी और अभी भी कर रहे हैं, और आशा करते हैं वो भी जहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी भक्ति का वातावरण बना रहेगा। तो बॉम्बे जा रहे हैं ना, बॉम्बे में तो कोई चिंता की बात नहीं है, कारवार से बहुत अच्छा एसोसिएशन वहाँ पर मिलेगा, तो निश्चित ही भक्ति की प्रगति होगी। तो इन सभी भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना है कि उनकी भक्ति बनाए रखें, और हम सब इनकी सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए तीन बार हरि बोल रहे हैं।
हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल, हरे कृष्णा। तो माता जी हमें कुछ रह गए हैं बोलने के लिए, यू वांट टू से समथिंग? हिंदी बोलते हो आप? तो स्पीक हिंदी, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी को हिंदी नहीं आती है, ये नेल्लोर से हैं हम लोग, जब तिरुपति गए थे तो नेल्लोर गए थे ना, तो जी ने बहुत सेवा की थी वहाँ पर, आपको प्रसाद अब याद है, वहाँ चल प्रसाद दो बार तीन बार कितनी बार, एक दिन में शायद तीन या चार बार खा लिया था लोगों ने, कुछ भी याद नहीं कितना, रहने की और सब अच्छी व्यवस्था की थी। नेल्लोर मंदिर में सेवा करते हैं कई सालों से, यहाँ पर आप लोगों को संग देने के लिए आए हैं ताकि आप लोग उनके संग का लाभ लें, तो इनसे भी प्रार्थना है कुछ है।
This is Atul Shukuru and all of you. Although I am not qualified for this yatra, I am taking association of you. But the regrets of Prabhuji and all of you allowed me to stay with you in 3 days. And I am very interested in hearing, but you know, in Nellu, completely English, but our services, there is no such a time to hear sufficiently, but here Atul Shukuru has given the opportunity to hear a lot of things here, and I came here to learn so many things from Prabhuji and all of you and devotees. And these 3 days I felt very happy about hearing a lot of things, and I came to know so many things very clearly. That is the blessings of Vaishnava, and so like this this will yatra Shravana yatra I heard this name mostly, so I saw also many yatras like different places like that, but this is Shravana yatra is very new to grow in our bhakti, and this is the first step in the learning the bhakti, Shravanam Kirtanam. So I probably saying in class, in spiritual world there is a bliss, those who are staying there, they are always happy and playing kirtan service to Lord Krishna, and probably given some taste here what would be the benefit of hearing. So Prabhuji showed that so I am very grateful to Prabhuji and all of you. Thank you. Thank you.
का एक भजन रह गया इस बार ना, जय जय जगन्नाथ। आइए आप कुछ बोलो, एक काम करो माइक ले जाओ समय पे से। और कोई रह गए तो माता जी को माइक दे दीजिए। कोई है नहीं है माता जी को उनको दीजिए, आपको उनको उनको माइक पीछे। माइक से इतना डरते हैं।
और पढ़ाई भी कर लेते हो कभी कभी?
हाँ।
क्या पढ़ते हो? कौन से सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ाई करते हो?
मैथ्स।
मैथ्स तो बहुत टफ होता है ना सर। अच्छा, लाइफ में क्या बनना चाहते हो अंत में? आगे चल के क्या बनना है बड़े होकर? मेरे ठीक है चलो। हरे कृष्ण। इसके लिए तालियां बजाइए जोर से। प्रार्थना कीजिए कि अच्छा भक्त बने, इतनी अच्छी भावना है उसको भी से, तो आगे भी अच्छा ही भक्त बने। सो आप सब ने बोल लिया या कुछ लोगों ने नहीं बोला, लेकिन अभी समय भी बहुत कम है, तो एक चर्चा दीक्षा के विषय की करना चाहते थे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आवश्यक विषय है, तो इसलिए दीक्षा क्या है, क्यों आवश्यक है, इस्कॉन में दीक्षा के क्या नियम हैं, इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें।
ज्ञान लुप्त तो हो जाता,
जो भी ज्ञान दिया गया है या जो भी ज्ञान परंपरा में है, शास्त्रों में है, वो ज्ञान टूट जाता, चला जाता, समाप्त हो जाता, लुप्त हो जाता। इसीलिए परंपरा बहुत आवश्यक है और परंपरा से जुड़ने के लिए दीक्षा एक प्रक्रिया है। तो इस्कॉन संस्था में नियम ऐसे हैं कि जब कोई भक्त मंदिर से जुड़ते हैं और भगवान के नाम का जप करने लगते हैं, मेरे ख्याल से रहने दो, आप लोग को सुनाई दे रहा है आपको सबको पीछे तक, है ना, उसको बंद कर दीजिए आवाज। आप लोग आगे आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, गर्मी है, जमीन पर भी बैठेंगे तो कोई गलती नहीं, रहने दीजिए, साफ है जमीन, कोई चिंता की बात नहीं। तो इस्कॉन में दीक्षा के कुछ नियम रखे गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सबको वो नियम पता होने चाहिए ताकि जब आप आगे दीक्षा लेना चाहें तो आपको ज्ञान हो कि दीक्षा के क्या नियम हैं। तो पहली चीज, दीक्षा क्या है? दीक्षा के द्वारा गुरु शिष्य को परंपरा से जोड़ देते हैं। दीक्षा एक भक्त की गंभीरता को प्रदर्शित करती है। भक्ति ये दिखलाता है कि अब वो गंभीर है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, इसीलिए दीक्षा ग्रहण करता है। तो पहली चीज परंपरा से जुड़ने के लिए, दूसरा चीज भक्ति में गंभीरता को दिखलाने के लिए। जैसे अगर जैसे आप सब लोग यहाँ यात्रा में आए हैं तो हो सकता है कि कई भक्तों को बुलाया गया वो नहीं आए, या आप भी कह सकते थे हम नहीं आएंगे, लेकिन आप सुनने के लिए गंभीर हैं तो आप वो गंभीरता दिखलाने के लिए यहाँ पर आए। नहीं तो कोई भक्त कह सकते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग होगी, हम वहाँ पर रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं आने की। लेकिन क्योंकि हम गंभीर हैं, श्रवण करना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आए। इसी तरह जो भक्ति में गंभीरता को दिखलाना चाहते हैं तो वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा ग्रहण न करने का अर्थ है कि हम भक्ति में गंभीरता को दिखलाना नहीं चाहते, क्योंकि दीक्षा ग्रहण करने के बाद नियम पालन करने होते हैं। तो हम दीक्षा भी ग्रहण नहीं करेंगे और हम भगवान की भक्ति भी करते रहेंगे, ताकि जब भी हमें नियम तोड़ने हो कोई चिंता की बात नहीं है। इसीलिए दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि जीवन में गंभीरता आए। तो इस्कॉन में वैसे दीक्षा के विषय में बहुत कुछ है, कहने के लिए समय कम है, इसलिए शॉर्ट में कह रहे हैं। इस्कॉन में दीक्षा के कुछ नियम हैं। पहली चीज, भक्त को 16 माला जप करना चाहिए। दूसरा चीज, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, अर्थात मांसाहार नहीं करना बिल्कुल भी, मांस में मछली भी आती है, तो मांसाहार नहीं, और कोई नशा नहीं जैसे शराब इत्यादि, और इतना ही नहीं चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना, और तीसरा जुआ नहीं खेलना, और चौथा अवैध संग नहीं करना। अवैध संग अर्थात जो विवाहित पुरुष हैं वो अपनी पत्नी के अलावा और किसी स्त्री से संपर्क नहीं रखें, और जो ब्रह्मचारी इत्यादि हैं वो किसी भी स्त्री से संपर्क नहीं रखें, तो उसको कहते हैं कि नियम का पालन करना। तो ऐसे ये 4 नियम के जो पालन करते हैं जब भक्ति में आते हैं, तो इस्कॉन में नियम ऐसे हैं कि 6 महीने तक आप अगर ये कार्य करते हैं, 16 माला जप और 4 नियम का पालन, तो आप योग्य हैं दीक्षा को प्राप्त करने के लिए। 6 महीने अगर आपने किया, तो पहले 6 महीने आपको प्रभुपाद जी को ही शिक्षा गुरु मानकर उनको प्रणाम करते हुए जप करना होता है। फिर जब आप 6 महीने बाद अपने किसी एक गुरु को चुन लेते हैं, तो फिर उन गुरु को प्रणाम करते हुए और 6 महीना आप उनका नाम ले सकते हैं और फिर आपको दीक्षा मिलती है। तो ये नियम है इस्कॉन के। तो 6 महीना अगर आपने जप किया है तो आप योग्य हैं भक्ति भक्ति की दीक्षा प्राप्त करने के लिए। तो गुरु क्या है, दीक्षा क्या है और कौन गुरु हैं इस्कॉन में? पहले ऐसा था जब प्रभुपाद थे तो केवल प्रभुपाद एक गुरु थे। सब भक्त जो भी इस्कॉन में आते थे वो प्रभुपाद से दीक्षा लेते थे, लेकिन अब प्रभुपाद नहीं हैं और उनके शिष्य हैं। तो इस समय इस्कॉन में बहुत से सन्यासी हैं और उनमें से बहुत से गुरु भी हैं। तो जो दीक्षा देने के योग्य हैं ऐसे लोगों की सूची मंदिर से आपको मिल सकती है कि कौन कौन हैं। ऐसे बहुत से हैं तो उनमें से आप किसी भी एक को अपना गुरु चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। जो आपको गुरु कैसे चुनना चाहिए, गुरु को हम कोई जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में, आलू अच्छा लगा या नहीं लगा, टमाटर अच्छा लगा या नहीं लगा, ऐसे गुरु नहीं चुना जाता। गुरु वो व्यक्ति होता है जो भक्ति में आपको बहुत प्रेरणा देता है, जिसके संग में या जिसको देखने से, जिसको श्रवण करने से हमें भक्ति में बड़ी प्रेरणा मिले और हमें लगे कि ये व्यक्ति हैं जिनको हम समर्पण कर सकते हैं, उन्हें गुरु बनाना चाहिए। तो इस्कॉन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप गुरु बना सकते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है इस्कॉन, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति सबको दीक्षा देंगे, ऐसा नियम नहीं। बहुत से व्यक्ति हैं, बड़े वरिष्ठ सन्यासी हैं, कुछ गृहस्थ भक्त भी हैं जो दीक्षा देते हैं। गृहस्थ हैं लेकिन वो भी दीक्षा गुरु के स्तर पर है। तो आप किसी से भी दीक्षा ले सकते हैं। और लेकिन जैसे हम बता रहे थे कि दीक्षा जब लेते हैं तो नियम का पालन होना चाहिए। और गुरु कैसे हमें पता चलना चाहिए कि इनसे हम दीक्षा ले सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, वो व्यक्ति आपको भक्ति में बड़ी प्रेरणा दें। दूसरा चीज़, वैसे गुरु को किस आधार पर चुनना चाहिए? भाषा, जाति या रंग, देश, इनके आधार पर नहीं। कि हमारी अगर भाषा बोलते हैं तो हम उनसे दीक्षा लेंगे, बहुत अच्छा गाते हैं तो हम दीक्षा लेंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं तो हम दीक्षा लेंगे, नहीं। अगर वो मुझे भक्ति में प्रेरणा देते हैं, भले अच्छा गाते ना हों, भले अच्छा बोलते ना हों, लेकिन अगर उनसे मुझे भक्ति में प्रेरणा मिलती है और मुझे लगता है कि मैं समर्पण कर सकता हूँ, तब मुझे उन्हें गुरु स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि एक बार गुरु को स्वीकार करके हम ये नहीं कह सकते कि अरे अरे गलती हो गई, मुझे दूसरे गुरु स्वीकार करने थे, ये अपराध है। इसीलिए गुरु स्वीकार करने से पहले बड़ी अच्छी तरह से अपने मन में जांच लेना चाहिए कि यही वो व्यक्ति हैं जिनको मुझे समर्पण करना है, और तब फिर उन्हें, और फिर एक बार स्वीकार करने के बाद फिर बदलना नहीं चाहिए। वैसे बदल सकते हैं, इस्कॉन में नियम है दीक्षा लेने के पहले आप बदल भी सकते हो, लेकिन अच्छा यही होगा कि पहले आप रुकें, ध्यान से पूरा अच्छी तरह जांच लें, आपको पता चले कि यही व्यक्ति मुझे ज़्यादा प्रेरणा देंगे, इन्हें मैं समर्पण कर सकता हूँ, तब हमें उनको गुरु स्वीकार करना चाहिए और फिर उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो इसीलिए ये नियम है दीक्षा के। और गुरु कौन है इस्कॉन में? बहुत सारे गुरु हैं जिनकी लिस्ट अवेलेबल है, कौन कौन गुरु हैं, आप उनका संपर्क कैसे हो सकता है? आप उनके प्रवचन सुन सकते हैं, उनके शिष्यों से मिल सकते हैं, किसी भी तरह से उनके संपर्क में आ सकते हैं। क्योंकि जो हमारे इस्कॉन के सन्यासी हैं वो बहुत व्यस्त रहते हैं, इसीलिए पर्सनली उनसे मिलना कभी कभी कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी आप उनको प्रवचन के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा उनके संपर्क में रह सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का दीक्षा के विषय में? कुछ पूछना चाहते हैं?
महाभारत में कृष्ण रहते उस समय
दीक्षा
दीक्षा और संन्यास को
हाँ, महाभारत का समय अलग था, वहाँ संस्थाएं नहीं थी, वहाँ हर कोई गुरुकुल में जाना, दीक्षा लेना, ये सब नियम था। भगवान ने स्वयं सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में जाकर उनको गुरु स्वीकार किया। तो उस समय पर जो गुरु हुआ करते थे, जैसे पांडवों ने कृपाचार्य को स्वीकार किया, कृपाचार्य उनके कुल गुरु थे, तो ऐसे गुरु को स्वीकार किया जाता था। कृष्ण भले ही भगवान थे, लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति की भूमिका निभा रहे थे, और इसीलिए वो गुरु नहीं बने। उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया, ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि हर व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए। इवन भगवान आते हैं तो वो भी स्वीकार करते हैं, कि उदाहरण देने, क्योंकि अगर वो स्वीकार नहीं करते तो हम ये कहते कि कहाँ कृष्ण ने नहीं किया, हम क्यों करें, भगवान नहीं कर रहे तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भी स्वीकार किया।
कृष्ण भगवान का गुरु
सांदीपनि मुनि, उनके गुरु सांदीपनि मुनि से, मतलब जब छोटे थे वो गए थे गुरुकुल में, तो उन्होंने स्वीकार किया। वैसे भगवान के न तो कोई गुरु होते हैं, न माता न पिता, भगवान के कौन गुरु हो सकते, भगवान आदि गुरु हैं सबके। लेकिन जब वो लीला करते हैं मनुष्य की, तो किसी को माता पिता बनाते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, किसी को भाई बनाते हैं। जैसे एक ड्रामा होता है, तो ड्रामा में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाग करते हैं, तो डायरेक्टर जो होता है वो डिसाइड करता है, अच्छा तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, वो बन जाते हैं, वो है नहीं, बन जाते हैं। इसी तरह भगवान निर्णय करते, ठीक है आप मेरे गुरु बन जाना, आप मेरे माता बन जाना, आप मेरे पिता बन जाना, हम लोग ड्रामा करेंगे। यस, और कोई प्रश्न दीक्षा के विषय में है? हाँ, आपकी दीक्षा क्यों नहीं हुई? आपने एग्जाम दे दिया, कहाँ पे दिया? हाँ, भक्ति रसामृत महाराज से, महाराज अभी थोड़े समय बाद देंगे, अभी अभी तक उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी, अभी उनके ऊपर है। देखिए ऐसा भी होता है कि गुरु के ऊपर भी है, इस्कॉन के नियम तो हैं, लेकिन उसके बाद गुरु के ऊपर है, गुरु देना चाहे या ना देना चाहे। और अगर हमने एक बार गुरु स्वीकार किया है, फिर वो अगर रुकने के लिए बोले तो रुकना चाहिए। जैसे एक बार एक सन्यासी थे, तो उनको कोई कार में ले जा रहे थे, तो भक्त ने सोचा कि अकेले में हूँ, इनको कह देता हूँ, जल्दी मेरी दीक्षा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा महाराज आपसे दीक्षा चाहिए। उन्होंने ऐसे घूमा, बोले 5 साल रुक जाओ, घबरा गए, अभी 5 साल रुके और बाद में दीक्षा। तो महाराज ने अभी शुरू नहीं किया है, बहुत सारे लोग हैं, यहीं नहीं, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, बेलगाम में, बॉम्बे में, बॉम्बे में बहुत लंबी लिस्ट है। तो अब जब शुरू करेंगे तब अभी वो दीक्षा उन्होंने शुरू नहीं किया है देना, लेकिन वो गुरु के स्तर पर है, आप उनके नाम ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। और कोई प्रश्न? कोई और प्रश्न दीक्षा से संबंधित?
गृहस्थ दीक्षा नहीं ले सकते।
ओ क्यों नहीं? गृहस्थ भक्ति दीक्षा लिए हुए, गृहस्थ है, गृहस्थ भक्ति सब ले सकते, दीक्षा सबके लिए।
गृहस्थ रहेंगे तो मुझसे मिलना।
हाँ, अगर वो बहुत व्यस्त हैं, या ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलते हैं, कभी समय देते हैं। दूसरा मार्ग है कि अगर आप उनके प्रवचन सुने, या उनसे ईमेल वगैरह पे संपर्क में रहें, या फिर उनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा उनके संपर्क में रहें, तो या फिर जब भी जहाँ भी उनके प्रवचन हो उसको जाकर सुने, तो वो भी एक संघ के समान है। गुरु से सुनना वो गुरु का संग करने के समान है, क्योंकि जो भी गुरु को बोलना है वो प्रवचन में बोल ही देते हैं। तो उसके अलावा अलग से ज़रूरी नहीं है कि हमें इंस्ट्रक्शंस मिले, जो भी प्रवचन है उसमें वो इंस्ट्रक्शन ही देते हैं कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन। और कोई प्रश्न दीक्षा के विषय में?
एक बार दीक्षा लेने का बाद वापस
नहीं? दीक्षा हमें तभी लेनी चाहिए जब हमें पक्का मालूम हो कि बस अभी इनसे ही लेना, नहीं तो नहीं लेनी चाहिए, रुकना चाहिए। श्रील प्रभुपाद 1922 में अपने गुरु महाराज से मिले थे, और उन्होंने दीक्षा 1933 में ली, 11 साल बाद, जबकि रोज मिलते जाते, रोज नहीं मिलता, रेगुलरली मिल रहे थे। तो दीक्षा तभी लेनी चाहिए जब मान लिए कि हाँ बस इन्हीं को करना। क्योंकि दीक्षा कोई फैशन नहीं है, दीक्षा समर्पण है, और समर्पण जीवन में एक ही बार करना चाहिए।
दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु,
दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में क्या अंतर है? एक दृष्टि से दोनों समान है क्योंकि दोनों आपको कृष्ण की ओर ले जाते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु फॉर्मली आपको परंपरा से जोड़ते हैं, फॉर्मली फॉर्मेलिटीज के साथ, या विद्या। शिक्षा गुरु आपको फॉर्मली परंपरा से नहीं जोड़ते, लेकिन वो भी भक्ति पर ज्ञान ही देते। तो भक्ति में काफ़ी गुरु हो सकते हैं। एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, जैसे आपको कुछ भी नहीं मालूम था इस्कॉन के बारे में, भक्ति के बारे में, किसी ने कहा चलो संडे आया करो, चलो यहाँ आ जाओ, हम जा रहे हैं, अच्छी यात्रा है, बस इतना कहा, वो पथ प्रदर्शक गुरु है, क्योंकि वो उसने आपको भक्ति का पथ दिखलाया। उसके बाद जब आते हैं तो हमें श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने मिलते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा गुरु। फिर और शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, ये भी नहीं। फिर आप और भी लोगों से सुनते हैं, वो लोग आपको ज्ञान देते हैं, ये सब शिक्षा गुरु है। और फिर जब आप फॉर्मली दीक्षा ले लेते हो किसी गुरु से, तो वो दीक्षा गुरु, वो एक होते हैं, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। और कोई प्रश्न दीक्षा के विषय में?
ये देखो भक्ति की जो स्टेज है, श्रद्धा से और प्रेम तक की जो स्टेज है, तो इनमें बिना दीक्षा के कोई प्रोग्रेस नहीं होती है।
बिना दीक्षा के इसलिए प्रोग्रेस नहीं हो पाती है क्योंकि पहली चीज़ दीक्षा के द्वारा, जैसे हमने बताया कि आप अपनी सीरियसनेस दिखाते हो, तो आप गंभीर हो जाते हो तो जल्दी प्रोग्रेस होती है, फास्ट होती है, इसीलिए दीक्षा आवश्यक। और दूसरा, जो व्यक्ति दीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं है, तो उसके लिए एक स्वतंत्रता का वातावरण बन जाता है, क्योंकि अगर कोई दीक्षित भक्त है तो उसको नियमों ने बांध दिया, लेकिन जिसने दीक्षा नहीं ली वो स्वतंत्र है, तो उस स्वतंत्रता के भाव में वो पूर्ण रूप से कृष्ण की ओर नहीं जा पाता, इसलिए दीक्षा आवश्यक है। आपने जब तक विवाह नहीं किया आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी करिए, रात को 10 बजे आइए, 11 बजे आइए, कोई पूछने वाला नहीं। अभी आप आधा घंटा लेट हो जाइए, माता जी बाहर खड़े रहते हैं, है ना माता जी, है। तो इट्स लाइक कमिटमेंट, इट्स अ कमिटमेंट।
दीक्षा लेने के बाद दूसरे
लोगों का
प्रसाद,
प्रसाद दूसरे मतलब कौन? अगर भगवान का प्रसाद है तो कहीं भी ले सकते हैं, भगवान का प्रसाद होना चाहिए, वो तो आपको दीक्षा के पहले भी नहीं लेना चाहिए ऐसा नहीं दीक्षा के बाद, दीक्षा के पहले भी नहीं लेना चाहिए, हमें केवल प्रसाद लेना चाहिए। और प्रसाद कहीं भी हो, अगर मान लीजिए आप अपने भाई के घर जाते हैं, उनको बोलिए कि आप बिना प्याज लहसुन का बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए, मैं स्वीकार करूँ, तो वो लोग करेंगे। अगर आपसे प्रेम है, आपको बुलाना चाहते हैं, आप बोलिए ऐसे करना, तो वो तो हमें अभी भी नहीं करना चाहिए, दीक्षा के बाद ही में दीक्षा। मग क्या बोलते हैं, मग मनात अर्पण करायचं भगवंताला, मना सांगायचे ओम श्री विष्णू ओम श्री विष्णू ओम श्री विष्णू, चालेल। सबसे पहले हमें खुद गंभीर होना चाहिए, जब तक हम गंभीर नहीं हैं, माता पिता को हम लोग गंभीर नहीं कर सकते। जब हम अपने आप बहुत गंभीर होंगे, नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे, तब अपने आप माता पिता भी बनते हैं। तो हमें जाकर वहाँ नियमों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि ठीक है माता पिता नहीं मानते इसीलिए जो भी बना रहे जैसा भी बना रहे खा रहे हैं या जो भी कर रहे, नहीं, जब करना ही करना है, नियम पालन करना ही करना है। जब वो देखेंगे कि आप इतनी कड़ाई से पालन कर रहे हो तो स्वाभाविक है उनके भी हृदय में भक्ति जागृत हो।
दीक्षा लेने का मन में इच्छा हो
कभी अन्य देव देवता को पूजा कर सकते हैं?
दीक्षा लेने की इच्छा नहीं भी हो तभी भी नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है, अन्य देवी देवताओं की हमें देवी देवताओं से कोई वैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, और ना ही हम उनका अपमान करते हैं। देवी देवता हमारे लिए पूजनीय हैं। पूजनीय अर्थात जैसे वरिष्ठ भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, ऐसे वो भी हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन उनको भगवान मानकर पूजा करने का हम लोग विरोध करते हैं। हम उनका विरोध नहीं करते, हम गणेश जी का विरोध नहीं करते, लक्ष्मी दुर्गा शिव जी, हम इनका विरोध नहीं करते, उनके विरुद्ध नहीं है। उनको भगवान मानकर उनकी भक्ति करने का विरोध करते हैं, क्योंकि वो भगवान नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि हमें, अगर आपके घर में है भी देवी देवता, कई सालों से कई पीढ़ियों से चला आ रहा है उनकी भक्ति, तो अगर आप बंद कर सकते हैं तो बंद करना चाहिए। अगर आपको विश्वास है, कृष्ण पर पूर्ण श्रद्धा है, तो बंद करना चाहिए। नहीं कर सकते किन्हीं कारणों से कम उनको भगवान की तरह नहीं पूछना चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर भगवान की फ़ोटो और नीचे देवी देवताओं की रह सकती है, वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपके मन से नहीं जा रहा है तो ठीक है, नीचे कम से कम भगवान को ऊपर रखिए। जैसे हम भगवान को ऊपर रखते हैं, नीचे गुरु परंपरा रखते हैं, तो वो ठीक है कि हम उनको भक्त मान रहे हैं, भगवान नहीं मान रहे। लेकिन उनकी भगवान मानकर पूजा बिल्कुल बंद करनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में बहुत स्पष्ट भगवान ने कहा है, यान्ति देववृतान देवान पितृन यान्ति पितृवृतान भूतान यान्ति भूते च। भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उनके पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो हमारा उद्देश्य कृष्ण के पास जाना है। देवी देवताओं के लोक में जाके फिर से आना पड़ता है। भगवान कहते हैं भगवद्गीता के 9वें अध्याय में कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, फिर से आना पड़ता है नीचे। इसीलिए हमें आध्यात्मिक, तो इसीलिए देवी देवताओं की पूजा बंद होनी चाहिए।
दीक्षा के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है?
दीक्षा के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, मटीरियल एजुकेशन नहीं चाहिए दीक्षा के लिए। दीक्षा के लिए मटेरियल एजुकेशन काम नहीं करता, तो इसलिए, क्योंकि इसका अर्थ अगर हम लोग मटेरियल क्वालिफिकेशन रख दें कि कम से कम व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया होगा तब दीक्षा देंगे, तो इसका अर्थ हम ये कह रहे हैं कि जिसने भौतिक स्तर पर पढ़ाई नहीं की है वो भक्त नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा हो नहीं सकता। भक्ति सबके लिए, तो इसलिए वो नियम नहीं है। जिसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उसके लिए ओरल टेस्ट होते हैं। वो तो टेस्ट तो देने पड़ते हैं, लेकिन ओरल टेस्ट होते हैं, अर्थात उनको समझा दिया जाता है कि ये चीज़ है, फिर उनसे पूछा जाता है, ठीक है आप प्रभुपाद जी की प्रणति कहिए, आप ये बताइए प्रभुपाद जी कौन हैं इस संस्था में, जो आपको लिखना है वो पूछा जाता है। और कोई प्रश्न? ठीक है, अभी समय काफ़ी हुआ है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हमारी भी इच्छा नहीं हो रही जाने की कि हम लोग सब जाए, इतना अच्छा लगा आप लोगों के साथ, ऐसा लगा एक परिवार में रह रहे, बहुत दिन से परिवार में नहीं रहे थे तो अभी ऐसा लगा कि परिवार में रह रहे हैं सब, आप लोग माता पिता की तरह सब सेवा कर रहे हैं। तो अभी इच्छा नहीं हो रही जाने की, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा, क्योंकि कारोबार में थोड़ा प्रचार भी करना है। और आप सबसे विनती है कि आप सब रविवार को बिना चूके बोलते हैं ना, बिना चूके रविवार को आना चाहिए आप सबको। रविवार के दिन ये भक्तों का एक साथ आने का दिन है, ऐसा प्रभुपाद जी ने इसलिए रखा था कि सारे भक्त एक साथ आएं, एक दूसरे से मिलें। हमारे जैसे भी हम लोग 3 दिन साथ में थे, ऐसे ही हर रविवार को साथ में आएँ। तो इसलिए हमें रविवार के दिन कोई और कार्य नहीं करना चाहिए, रविवार को मंदिर में रहना चाहिए। हो सके तो सुबह से रहिए, बहुत अच्छा होगा, मंगल आरती आइए हर रविवार को, उसके बाद गुरु पूजा तक वहीं रहिए, प्रसाद लीजिए और फिर सेवा कीजिए और फिर प्रवचन सुनिए, फिर प्रसाद लीजिए और फिर घर जाइए। कितना अच्छा होगा रविवार अगर आप सब ऐसे करेंगे। तो आप सबसे विनती है कि हर रविवार कृपया मंदिर में आए, मंदिर में सेवाएं करें। अभी हम लोग बहुत कुछ मंदिर में नया करने के प्रयास कर रहे हैं और सभी भक्तों की इच्छा है कि इस वर्ष फिर से रथ यात्रा प्रारंभ की जाए, तो शायद दिसंबर में रथ यात्रा होगी भगवान जगन्नाथ की। और जन्माष्टमी का उत्सव भी हम लोग पिछले साल की तरह, जैसे हमने पिछले साल किया था, इस साल उससे भी और बड़े स्तर पर करने की इच्छा है। तो ये दोनों उत्सव अभी आने वाले हैं, जन्माष्टमी और रथ यात्रा, और साथ ही साथ मंदिर में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं धीरे धीरे। छोटा सा गार्डन बना रहे हैं हम लोग ताकि आप सब लोग वहाँ पर आ सकें, शाम को आराम से बैठें गार्डन में। पहले आप नहीं आते थे, थोड़ा गंदा रहता था, इसलिए गार्डन बना दिया, तो अभी आपको आना चाहिए मंदिर में। अभी 10 मिनट हैं, आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आप मंदिर में कुछ बदलाव चाहते हैं। आप लोग मंदिर देख रहे हैं काफ़ी समय से, तो मंदिर में कुछ चेंज होना चाहिए या जैसा चल रहा वैसा ही चलना चाहिए, कृपया उस विषय में बताइए। सेवाओं के विषय में, मंदिर के विषय में, मंदिर तोड़ कर नया बनाना है। सो आप लोग नहीं सजेशन देंगे तो कैसे अच्छा होगा, आपका ही मंदिर है ना, हम तो केवल गेस्ट हैं, विजिटर थोड़े समय के लिए। मंदिर तो आप परमानेंट मेंबर हैं वहाँ के, क्या करना चाहिए कुछ बदलाव?
किचन और थोड़ा बड़ा करना,
किचन और बड़ा करना,
ऐसा
3 करोड़ रुपए खर्चा किया। ये किचन अच्छा है, आगे चल के बनाएंगे निश्चित, हमें भी अच्छा लगा, तो आगे चलकर जब बड़ा मंदिर होगा तो उसका किचन ऐसे ही लगा, ताकि माता जी को बैठ कर सेवा करने में तकलीफ ना हो, खड़े होकर ही सब सेवा कर सकते। और कोई सुझाव मंदिर के लिए? कुछ नहीं, पेंटिंग्स भगवान की, भगवान की पेंटिंग्स
लगाना,
मंदिर करना, मंदिर को पेंट तो किया हुआ है, कैसे करना?
माता जी को रहने के लिए,
माता जी के लिए,
माता जी के लिए तो रूम, हम लोग देख रहे हैं मंदिर के पास कोई अच्छा रूम मिल जाए तो हम लोग ले रहे हैं, और फिर वो माता जी को बोला, क्योंकि मंदिर में अभी ब्रह्मचारी आश्रम है और ब्रह्मचारी आश्रम रहने के कारण, सेवाएं होने के कारण, प्रयास ऐसा है कि माताजियों का ज़्यादा संपर्क ब्रह्मचारियों से ना हो, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मंदिर के थोड़ा बाहर कहीं पर वो रूम हो, ताकि माताजी भी आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के रह सकें और ब्रह्मचारी इसको भी तकलीफ ना हो, तो इसीलिए ये रूम का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो वो रूम आपके लिए ही होगा, उसको आप ही संभालें, आप ही मेंटेन करें, सब आपको, खाली खर्चा हम लोग करेंगे उसका, बाकी सारा आपके लिए। तो हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही मिलेगा उसको हम लोग ले लें, लेकिन मंदिर के अंदर अभी व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं, कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो, ठीक है? और कोई बात? कोई और सुविधा, सजेशन? पेंटिंग्स लगानी चाहिए, मंदिर के ऊपर की दीवार खाली खाली करती है, या उसके लिए कुछ बहुत दिनों से मंदिर की जब से ओपनिंग हो रही है तब से कुछ सोच रहे हैं हम लोग, हो नहीं पाया,
क्या बनाना
है? अभी सोच रहे हैं क्या बनाना, वही जो ऊपर पहले उस पर कुछ POP का बनाना था, फिर उसको POP वाले ने ठीक से बनाया नहीं, फिर उसके बाद फाइबर का बनाने का सोचा था, वो हुआ नहीं, अभी चल रहा है और 1-2 साल है। दीवार में पेंटिंग, हाँ यस निश्चित, आपका सुझाव सरकार के सामने रखिए। जय
स्टॉल्स के भी कोई आते हैं तो
लेकिन भक्ति नहीं आते मंदिर में, बुक स्टॉल बना के क्या करेंगे? पहले भक्त आने शुरू करें, आप सब आने शुरू करें तो बुक स्टॉल भी आ जाएगा, क्योंकि बुक स्टॉल बनाएंगे खोलेंगे कोई आएगा ही नहीं लेने तो क्या करेंगे? आप सब चाहते हैं बुक स्टॉल होना चाहिए, लाइब्रेरी अच्छा है? नहीं ये बुक स्टॉल बने, गिफ्ट शॉप वगैरह वहीं पर पढ़ लेंगे, ये भी अच्छा है। यस लाइब्रेरी होनी चाहिए, बुक स्टॉल हमारी इच्छा है। देखिए अगर भगवान ने चाहा तो जन्माष्टमी के समय बुक स्टॉल शुरू कर सकें। प्लानिंग है, योजना है काफ़ी समय से, लेकिन एक था कि भक्ति नहीं आते उस दिन भर में तो इसलिए नहीं खोल रहे थे, और दूसरा क्या मैं कन्ने में रोका बोलते थोड़ा रोका काम था तो अभी वो प्रयास कर रहे हैं जन्माष्टमी के समय शायद ओपनिंग करें।
पीने के पानी के लिए
पीने के पानी के लिए वाटर कूलर कितने लोग चाहते हैं? ठंडा पानी बैर को ओके, ये हमारी गारंटी एक हफ्ते के अंदर लग जाएगा। ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया उसका, हमने बैंगलोर में ऑर्डर दिया है, वो कल आने वाला था आया नहीं है, तो जैसे ही आएगा एक दो चार दिन में आने वाला है, वो फिक्स हो गया है, वो लग जाएगा, वो भी वाटर प्योरीफायर के साथ। प्योरीफायर कूलर तो 100 लीटर्स का है वो, उसकी कैपेसिटी मतलब एक घंटे में 100 लीटर ठंडा कर देता है वो, तो बहुत 100 लीटर तो आप लोग पी नहीं पाए, तो ये आपका जो सुझाव ऑलरेडी हो गया।
किचन का साइड में एक बोरवेल बना है,
हाँ जी,
उधर मोटर रखे है ना, उसको पूरा कवर करके,
हाँ उसको करना है, करना
क्योंकि बारिश आके
वो करना है, वो तो निश्चित बोला है ऑलरेडी, वो क्या है वो आदमी नहीं, उनके काम करने वाले सब छोड़कर चले गए,
बारिश कभी भी आ सकता है।
हाँ यस वो करेगा निश्चित, काम करो लिख लो, मैं तुम भूल ही जाओ,
मैं बोला था किसी और को
नहीं, ऑलरेडी हमें भी करना है, वो रह गए अभी कर
रहे नया बोर्ड रहे
या नया बोर्ड कौन सी गार्डन है उस गार्डन को हमने रखा हुआ है, जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उसको यूज़ किया जाता है, इसलिए वहाँ कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि हमारा मंदिर छोटा है, 200 लोग आ गए तो पैक हो जाते हैं, जैसे गौर पूर्णिमा पे आपने देखा था, इसलिए बाहर का चीज
साइड में है, छोटे पेड़ से अगर ले सकते
हैं, हमारी भी इच्छा थी लेकिन अभी जगह ठीक नहीं हो रही, क्योंकि उस साइड में स्टॉल का जगह खुलेगा तो वो जगह चली जाएगी, देखेंगे अगर जगह हुई तो लिखेंगे, अंदर लिख रहे हैं वैसे ब्रह्मचारी आश्रम में जो ऐसे क्रॉस बना है उसके ऊपर लिखते हैं। भागवतम क्लास कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दीजिए, लेकिन जब कर रहे डाले असर जब करे
प्लेट्स धोने के लिए आते हैं ना, तीन टैप है वो एक ही बार
हाँ टैप बढ़ाने चाहिए
माता जी के लिए
यस यस वो टैप बढ़ाने चाहिए वो अच्छा से लिखो पूनम को आप लिखो क्या लिखो टैप बढ़ाने
चाहिए
टैप टैप बढ़ाने चाहिए जहाँ बर्तन धोते प्लेट धोते हैं ना उसके टैप बढ़ने चाहिए मैंने भी कई बार सोचा था संडे को भीड़ हो जाती लाइन लग जाती टैप बढ़ाने चाहिए और कोई सुझाव मंदिर के लिए 5 मिनट केवल बाकी आप सबकी मर्जी के लिए छः महीने के बाद अभी ये तो आप लोगों के ऊपर है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम तो हर हफ्ते आ सकते हैं दिवाली के बाद है नहीं ऐसा है हमने ऐसा सोचा है कि एक यात्रा आप लोग भक्ति रसामृत महाराज के साथ जाते हैं वो होती है अक्टूबर के पास पास एक यात्रा हम लोग करेंगे मार्च या अप्रैल में ऐसे कुछ या कहीं और जैसे हम तिरुपति गए थे और एक ये यात्रा तो ऐसे तीन यात्रा हो जाएंगी बहुत हो जाएगा साथ अभी नेक्स्ट यात्रा कहाँ करनी है आप लोग बताइए हाँ वृंदावन मायापुर। अच्छा कितने लोग मायापुर जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। मायापुर ओके। और कितने लोग वृंदावन जाना चाहते हैं? कम। वृंदावन देखा नहीं आपने? मायापुर देखा? सो मायापुर जगन्नाथपुरी की यात्रा
करें। मायापुर जाना है,
जगन्नाथपुरी मायापुर की यात्रा करेंगे। अभी वैसे हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं रथ यात्रा में, लेकिन वो केवल युवकों के लिए, माता जीव के लिए नहीं है। तो अगली बार जब हम लोग यात्रा जाएंगे तो जगन्नाथपुरी मायापुर की करेंगे, जैसे हम तिरुपति गए थे इस बार। तो साल में एक बार कुडाल में आएंगे या दो बार में
देखेंगे।
तो आप लोग साल में एक बार आना चाहते हैं, दो बार कुडाल? कुडाल अच्छा लगा ना यात्रा, ये छोटी यात्रा।
दो बार से स्टार्ट हो गई है तो धीरे धीरे चार बार
साल में।
इधर आने से बाहर नहीं जा सकते, इधर ही रहे।
और नेटवर्क भी मिलेगा देख लो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेटवर्क से मिलता नहीं और कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता।
हाँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है,
सबका
मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं। सच में तीन दिन से हम भी बहुत शांत हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रोज रात पे जाके मोबाइल देखते हैं, कुछ भी नहीं।
ऊपर गए तो मैसेज आता है, कौन कौन किया वैसे मैसेज।
तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, मोबाइल भी नहीं चल रहा है, बहुत सुखी है तीन दिन से।
ज्यादा
बाकी लोग दुखी होंगे बाहर जो फोन कर रहे हैं।
मानव जब उसमें मोबाइल में ज्यादा एडिक्ट होता है।
यस, बहुत अच्छा। यहाँ एक अच्छी बात है, नेटवर्क नहीं है
इधर सभी उस समय पूरा ध्यान।
यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि हम जंगल में हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था जंगल की जैसी नहीं है। पेड़ों के नीचे नहीं रहना पड़ रहा है, तो ये व्यवस्था अच्छी है। लेकिन बाकी वैसे पूरा जंगल है, शांत है, और कहीं बाहर जाना नहीं है। बस गर्मी भी नहीं है, केवल कथा सुनना और प्रसाद लेना। प्रसाद ठीक लगा आप लोग को? अच्छा लगा प्रसाद? बढ़िया बना था। ओके, सो अंत में हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग सब यात्रा में आए, विशेष करके उन भक्तों को, नाम नहीं लेंगे क्योंकि हो सकता है किसी का नाम रह जाए, लेकिन उन भक्तों को जिन्होंने इसकी व्यवस्था की। वैसे बहुत कठिन होता है छोटी सी यात्रा को भी करना, फ़ोन करो भक्तों को, हाँ मैं जाना, बोले नहीं आ रहा। तो सोचते अगला फ़ोन करें कि नहीं करें।
ऐसा ही कृष्ण के कोई वो मानव है कि उधर आध्यात्मिक जीवन में बहुत कष्ट होता है, रहता कोई बोलता रहता है ना हम उसको निष्पना की इधर नहीं क्या नहीं आध्यात्मिक।
तो जिन भक्तों ने ये व्यवस्था की, पहले सबको फ़ोन वोन करके सब लगाना, फिर ट्रेन की व्यवस्था, जाना आना बहुत सारा लगता है, हेडेक बहुत होता है, और फिर यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था। आप लोग जब सुबह आए तो ब्रेकफास्ट रेडी था ना? तो ब्रेकफास्ट और फिर सारा प्रसाद की व्यवस्था। यहाँ पर सामान पास में नहीं मिलता है, बहुत दूर से लाना पड़ता, 4-5 किलोमीटर दूर स्टेशन के पास जाके वहाँ से लाना पड़ता था। और इतना सब होने पर भी हमारी डांट सुननी पड़ती थी हमको, समय पर रेडी नहीं हुआ, क्या कर रहे हो, ये वो। तो ऐसे सब हो के लोगों ने बहुत सेवा, माता जी ने सेवा की किचन में, विशेष करके आज बहुत अच्छा लगा था देखो, इतनी प्रसन्नता से सब सेवा कर रहे थे। भगवान की सेवा ऐसे ही होनी चाहिए, प्रसन्नता से, चिल्ला कर नहीं, गुस्से में नहीं। कभी कभी एक बार हम संडे को देखने के लिए गए कि लोग सेवा कैसे कर रहे हैं रविवार को, तो अभी अंदर किचन में पहुंचे नहीं थे, बाहर से ऐसी आवाज़ें आई कि हम वहीं से वापस हो गए, हमने कहा देखना नहीं चाहते। तो ऐसे सेवा नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे भाव में सेवा होनी चाहिए। तो माता जी ने भी बहुत सेवा की, और आप सब ने बहुत अच्छी तरह से श्रवण किया, समय पर आए। आपको बोला 3 बजे तो एकदम 3:30 बजे आप आ जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आधा घंटा तो इधर उधर चलता है, क्या करें, लेकिन कम से कम आ तो जाते थे। और फिर आप सब ने भजन गाए, बहुत अच्छा लगा, बड़े उत्साह से। कल ऐसा लग रहा था कि वही होता तो अच्छा था भजन ही। सब ने अच्छे भजन गाए, तो आप सबको इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग थोड़े ही समय में 6 बजे निकलना, 6:30, लेकिन 6 बजे यहाँ से जाएंगे बस स्टैंड तक जाएंगे। 6 बजे मेन गेट पे सरना आना, 5 बज के 45 मिनट पे सब लोग अपना सामान लेके यहाँ के गेट पे आ जाइएगा, ताकि बाहर जाते जाते बस स्टैंड तक जाते जाते 6 बज जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने में ही टाइम लगता है ना, मंदिर के बाहर निकल वो गेट से थोड़ा सा आगे जाके आती है, तो समय पर जाइए नहीं तो बस निकल जाएगी, तकलीफ होगी, और फिर रात की ट्रेन है, और रात की आपकी ट्रेन है, रात को आप पहुँचेंगे वहाँ पे, तो कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, और फिर अभी आपसे रविवार को मिलेंगे, ठीक है?
कारवार कितना बजे?
कारवार 12:30 कल 1 बजे पहुँची थी,
10 से 8
आप कहाँ पे जाओगे? कोई किसी के साथ में बोले भक्त कोई रहने, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आपसे रविवार को मिलेंगे, वांछा कल्पतरु देश से कृपास अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।